हम सब कभी न कभी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं। हम अपनी किस्मत को, ग्रह नक्षत्रों को या शायद परिस्थितियों को दोष देते हैं। पर क्या हो अगर हमारी तकदीर को बदलने वाले सारे औजार, वो सारे टूल्स पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हों, बस हमें उनका इस्तेमाल करना ना आता हो। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं। हमारे पास है पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, और हम खास तौर पर इसके 17वें संकल्प की गहराइयों में उतरेंगे, जो एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली दावा करता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा।
जी, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस एक वाक्य में जो आत्मविश्वास छुपा है, जो जिम्मेदारी की बात है और जो सामाजिक बदलाव का कनेक्शन है, उसको परत दर परत खोला जाए। हम ये देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का खुद को बदलना पूरी दुनिया को बदलने की पहली सीढ़ी बन सकता है।
चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो ये संकल्प कहता है वो है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये बात तो मतलब हमारे समाज की एक बहुत गहरी मान्यता पर सीधा सवाल उठाती है कि हमारा भाग्य तो ब्रह्मा जी लिखते हैं, सब कुछ पहले से तय है। सत्संकल्प इस धारणा को कैसे देखता है?
देखिए, सत्संकल्प इस धारणा को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन उससे उसकी सही जगह दिखाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाग्य को जीवन का नियम नहीं मानना चाहिए, उसे एक अपवाद मानना चाहिए।
अपवाद?
हाँ, एक एक्सेप्शन। असल नियम तो पुरुषार्थ है, मतलब हमारी अपनी कोशिश, हमारा अपना कर्म।
अपवाद, ये दिलचस्प है। मैं इस पर थोड़ा और समझना चाहूंगा। किसी व्यक्ति का जन्म अगर बहुत गरीबी में हुआ हो या किसी शारीरिक अक्षमता के साथ, तो उसे अपवाद कहना क्या उस व्यक्ति की सच्चाई को कम आंकना नहीं होगा? उसके लिए तो वही उसकी हकीकत है।
बहुत ही जरूरी सवाल है ये। देखिए, अपवाद कहने का मतलब उस दुख को छोटा बताना नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ परिस्थितियां वाकई हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप, बाढ़, ऐसी विपत्तियां जिनसे बच पाना हमारे वश में नहीं होता। सत्संकल्प में इसकी तुलना डॉक्टर की दी हुई मॉर्फीन या नींद की गोली से की गई है।
अच्छा, मॉर्फीन की तरह? मतलब जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो तो ये सोचकर मन को थोड़ी राहत दी जा सकती है कि शायद यही भाग्य में था। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा है।
बिल्कुल, ये उस असहनीय पीड़ा में एक अस्थायी राहत देता है, एक टेम्पररी रिलीफ। लेकिन क्या कोई मॉर्फिन के सहारे पूरी जिंदगी जी सकता है? नहीं, वो इलाज नहीं है, सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए दबाने का तरीका है। उसी तरह भाग्यवाद को जीवन जीने का स्थायी आधार नहीं बनाया जा सकता।
सही बात है। अगर हम हर छोटी बड़ी असफलता के लिए भाग्य को ही दोष देने लगेंगे तो फिर तुम कभी कोशिश ही नहीं करेंगे।
हाँ,
और सत्संकल्प भी तो यही तर्क देता है ना, कि अगर सब कुछ भाग्य से ही तय है तो कोई मेहनत क्यों करेगा? कोई किसान अच्छी फसल के लिए दिन रात एक क्यों करेगा? या कोई विद्यार्थी परीक्षा के लिए क्यों पढ़ेगा? फिर तो जो भाग्य में लिखा है वो बैठे बिठाए मिल जाना चाहिए।
सही पकड़ा आपने। असल में हमारा अंतर्मन जानता है कि सच क्या है, इसीलिए तो हर कोई पुरुषार्थ में लगा है। हमारी आत्मा का जो असली विश्वास है वो पुरुषार्थ पर ही है, भाग्य पर नहीं। इसलिए हमें ये मानना होगा कि भाग्य केवल एक अपवाद है, जीवन का नियम नहीं।
ठीक है, तो अगर ब्रह्मा जी हमारा भाग्य नहीं लिखते तो फिर इसे लिख कौन रहा है? इस सवाल का जवाब सत्संकल्प क्या देता है?
जवाब बहुत सीधा और बहुत सशक्त है, हम खुद। परमात्मा को समदर्शी और न्यायकारी बताया गया है, वो तो सभी का पिता है, उसके लिए सब संतान एक बराबर है, तो वो भला किसी के साथ पक्षपात क्यों करेगा? क्यों किसी का भाग्य अच्छा और किसी का बुरा लिखकर अन्याय करेगा? ऐसा करना तो उसके स्वभाव के ही खिलाफ होगा।
ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे समझें? मैं आज जो भी हूं, जिन हालात में हूं, वो मैंने खुद कैसे बनाया?
सत्संकल्प में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार कल का जमाया हुआ दूध आज दही बन जाता है, उसी प्रकार कल का पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर प्रस्तुत होता है।
वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जिसे हम आज अपना भाग्य या किस्मत समझ रहे हैं, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही कल के किए गए कर्मों का पका हुआ फल है।
हाँ, ये एक तरह से कर्म का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया कहा आपने, कर्म का कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल यही बात है। आज किए गए छोटे छोटे सही काम कल एक बड़ी सफलता के रूप में दिखते हैं, जिसे लोग कह देते हैं अच्छी किस्मत। और आज की छोटी छोटी गलतियां या आलस कल एक बड़ी मुश्किल बनकर सामने आता है, जिसे लोग बुरी किस्मत का नाम दे देते हैं। कर्म और उसके फल के बीच में जो समय का फासला होता है ना,
हाँ,
उसी फासले को लोग अक्सर भाग्य समझ लेते हैं।
तो इसका मतलब है कि हमें अपनी समस्याओं के लिए ग्रह नक्षत्रों को दोष देना बंद करना होगा। पर अगर समस्याएं हमने खुद ही पैदा की हैं, तो उन्हें सुलझाने का रास्ता भी तो हमारे ही पास होगा। सत्संकल्प इस बारे में क्या मार्गदर्शन देता है?
बिल्कुल, समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उन लाखों करोड़ों मील दूर बैठे ग्रहों को पूजने की जगह हमें हमारे मन और मस्तिष्क में रहने वाली 9 प्रत्यक्ष देवियों की साधना करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये वो असली ग्रह हैं जिनकी थोड़ी सी कृपा से ही जीवन की दिशा बदल सकती है।
9 देवियां हमारे भीतर, ये तो बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली विचार है। हम नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की पूजा तो करते हैं, पर हमारे अंदर कौन सी देवियां हैं, ये कौन है?
ये 9 शक्तियां हमारे मन के क्षेत्र में ही काम करती हैं। सत्संकल्प में इनके नाम हैं आकांक्षा, विचारणा, भावना, श्रद्धा, प्रवृत्ति, निष्ठा, क्षमता, क्रिया और मर्यादा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, हमारी इनर पावर्स।
ये नाम बहुत गहरे हैं, क्या हम इनमें से कुछ को थोड़ा और समझ सकते हैं? जैसे आकांक्षा और विचारणा में क्या फर्क है? और आकांक्षा यानी इच्छा या एम्बिशन, उसे एक देवी, एक दैवीय शक्ति कैसे माना जा सकता है? कई आध्यात्मिक परंपराओं में तो इच्छा को ही सारे दुखों का कारण बताया गया है।
यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है। यहाँ किसी शक्ति को दबाने या खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि उसे साधने और सही दिशा देने की बात है। आकांक्षा का मतलब है एक ऊंची इच्छा, एक बड़ा लक्ष्य रखने की शक्ति। बिना लक्ष्य के जीवन में ऊर्जा कहाँ से आएगी? लेकिन ये आकांक्षा स्वार्थ से भरी ना हो, बल्कि उत्कृष्टता की ओर जाने वाली हो। यही साधना है, अपनी इच्छाओं को पवित्र करना।
और विचारणा?
विचारणा है उस लक्ष्य तक पहुंचने का नक्शा बनाने की शक्ति, यानी सही सोच, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। आपके पास बहुत ऊंची आकांक्षा हो सकती है, लेकिन अगर विचारणा बिखरी हुई है, सोच स्पष्ट नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे।
अच्छा।
और फिर आती है भावना, यानी इमोशन। विचारणा दिमाग का काम है, तो भावना दिल की शक्ति है। ये आपके प्लान में ईंधन भरती है। सकारात्मक भावना के बिना बड़े से बड़ा प्लान भी अधूरा रह जाता है।
मतलब ये तीनों मिलकर काम करती हैं, आकांक्षा द व्हाट, विचारणा द हाउ और भावना द व्हाई, द फ्यूल। ये तो किसी भी सफल प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट लग रहा है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल।
आपने एकदम सही समझा। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो या कोई बड़ा उद्यमी, उसने जाने अनजाने में इन्हीं शक्तियों को साधा है। उसकी आकांक्षा ऊंची थी, विचारणा स्पष्ट थी, अपनी क्षमता पर श्रद्धा थी, काम के प्रति निष्ठा थी और उसने मर्यादा में रहकर क्रिया की। यही इन 9 देवियों की साधना है। देवलोक में बैठी देवियों की कृपा मिले ना मिले, ये पक्का नहीं, पर हमारे शरीर लोक में बैठी इन 9 शक्तियों की साधना कभी खाली नहीं जाती।
तो अपने अंदर की इन शक्तियों को जगाकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, ये बात समझ में आती है। ये पर्सनल ग्रोथ का एक मुकम्मल रास्ता लगता है। लेकिन लेकिन सत्संकल्प का दूसरा हिस्सा कहता है हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। यहां पर ये जो छलांग है ये बहुत बड़ी लगती है। मेरे अपने मर्यादा यानी सेल्फ कंट्रोल पर काम करने से युग कैसे बदल सकता है?
ये छलांग उतनी बड़ी नहीं है जितनी लगती है। यही सत्संकल्प का असली सार छिपा है। ये कहता है कि उत्कृष्टता ही श्रेष्ठता उत्पन्न कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम दुनिया में जितना सुधार देखना चाहते हैं, हमें खुद को उससे कहीं ज्यादा ऊंचा उठाना होगा।
इसके लिए सत्संकल्प में कोई उदाहरण दिया गया है?
हाँ, बहुत सरल और गहरे उदाहरण हैं। जैसे एक परिपक्व और स्वस्थ शरीर वाली माता ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, या फिर शरीर के अपेक्षा छाया हमेशा कुछ कमतर ही होती है।
अच्छा।
आप जितने लंबे होंगे आपकी छाया भी उतनी ही लंबी होगी, पर आपसे लंबी कभी नहीं हो सकती। चेहरे की तुलना में फोटो में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है।
मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, तो हमें पहले खुद एक आदर्श माता पिता बनकर दिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम ईमानदारी से काम करे तो हमें उनसे ज्यादा ईमानदार होना पड़ेगा।
जी,
हम दूसरों से जितनी अच्छाई की उम्मीद करते हैं हमें उसका एक ऊंचा आदर्श पेश करना होगा। हमारा आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लेखों और भाषणों का युग अब बीत गया है। अब दुनिया को सिर्फ बातों की नहीं बल्कि निखले हुए व्यक्तित्वों की जरूरत है। एक चरित्रवान व्यक्ति का मौन भी हजारों भाषणों से ज्यादा असरदार होता है। जब हम खुद को बदलने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाने लगते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को साधते हैं, तो एक ऊर्जा पैदा होती है जो हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है।
तो ये हम बदलेंगे युग बदलेगा का नारा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक व्यवहारिक सिद्धांत है। ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है। एक शांत तालाब में फेंका गया एक छोटा सा पत्थर भी लहरें पैदा करता है जो किनारे तक जाती हैं। वैसे ही एक व्यक्ति का चारित्रिक सुधार उसके परिवार में, उसके काम की जगह पर, उसके समाज में सकारात्मक लहरें पैदा करता है।
आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। यही युग निर्माण का विज्ञान है। युग परिवर्तन की बात पर विश्वास करना कोई हवाई महल बनाना नहीं है, बल्कि ये तथ्यों पर आधारित एक सच्चाई है। इतिहास गवाह है, जब जब समाज में बड़े बदलाव आए हैं, उनकी शुरुआत कुछ संकल्पशील व्यक्तियों के आत्म परिवर्तन से ही हुई है।
परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते निकल ही आते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि हमारे अपने भविष्य की और इस समाज के भविष्य की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही कर्मों, विचारों और आचरण में छिपी है। युग परिवर्तन कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये उन व्यक्तियों के सामूहिक पुरुषार्थ का नतीजा है जो पहले खुद को बदलने का संकल्प लेते हैं।
और इस संकल्प को अपनाना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये ईश्वरीय संकल्प का भागीदार बनने जैसा है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यह एक ईश्वर प्रेरित प्रक्रिया है जो हो कर ही रहेगी। इसलिए इस पर पूरी आस्था रखकर इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
आज की इस चर्चा से एक विचार मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। सत्संकल्प में कहा गया है कि पुराने समय में ऋषि मुनि समाज को दिशा दिखाते थे, पर आज वो परंपरा नहीं रही। अब ये जिम्मेदारी हम जैसे आम लोगों के कंधों पर है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में आपकी अपनी जिंदगी में, आपके परिवार में या आपके काम में, वो कौन से अवरुद्ध द्वार यानी ब्लॉक डोर्स हैं जिन्हें खोलने के लिए किसी बड़े आंदोलन की नहीं बल्कि शायद आपके अपने एक छोटे से चारित्रिक सुधार की जरूरत है। वो कौन सा एक छोटा बदलाव है जो एक बड़ी शुरुआत बन सकता है।